दिन भर तारीख 19 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। कल प्रधानमंत्री मोदी और आज ममता बनर्जी ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से।
हमारा उधर में एनएचसी का जरूरत नहीं है, उन्होंने ध्यान से सुना और उन्होंने इसको देखेंगे बोला है।
करेंगे विश्लेषण कि क्या ममता की कड़वाहट मिट गई। भारत प्रशासित कश्मीर में जब स्कूल बंद हुए तो कुछ ट्यूशन सेंटर बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में जुटे।
बोझ बन के रह गए थे घर में, कुछ कर नहीं सकते थे, रिवीजन भी कैसे करते थे, टेंशन था बहुत।
बीबीसी हिंदी ने सुनी जम्मू में बदतर हालात में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं की दास्तान।
कश्मीर की बंदैनी थी, बोली कमरा खा लिया मेरे पेट में, उसने धक्का मारा मेरे को, ऐसे ही गिरा दिया, मार दिया।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री से मुलाकात में उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC से प्रभावित बांग्ला और हिंदी भाषी लोगों का मुद्दा उठाया। कल ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और प्रदेश का नाम बदलने समेत कई मसलों पर चर्चा की थी। देश में बढ़े हुए ट्रैफिक जुर्माने के खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कारोबारी ट्रक संगठनों ने हड़ताल की। इस हड़ताल की वजह से दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में कई स्कूल बंद रहे और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दावा है कि इसमें 41 संगठन शामिल हुए। इसराइल में कुछ महीनों के भीतर हुए दूसरे चुनावों के बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध बरकरार है। विपक्षी मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट मोर्चे के नेता बेनी गैंस ने कहा है कि वो सभी दलों को साथ लेकर सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया जिसमें उन्होंने अपनी लिक्विड पार्टी के साथ साझे प्रशासन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ब्लू एंड व्हाइट मोर्चे के एक वरिष्ठ नेता ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंगलवार को हुए मतदान में किसी मोर्चे को बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू ने सत्ता साझा करने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बेनी गैंस को संबोधित करते हुए कहा,
बेनी
हमें आज ही एक व्यापक साझा सरकार बनानी चाहिए। देश हमसे, हम दोनों से जिम्मेदारी प्रदर्शित करने और सहयोग की अपेक्षा करता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं बेनी, आज मिलते हैं किसी भी समय, आज के समय की इस जरूरत को पूरा करने के लिए। तीसरा चुनाव करने का कोई कारण नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूँ। ये थे इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द। दक्षिणी अफगानिस्तान के जुबुल प्रांत में एक अस्पताल के पास हुए ट्रक बम धमाके में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग जख्मी हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। उनका कहना है कि वो अफगान सुरक्षा बलों के एक दफ्तर को निशाना बना रहे थे। हवाई बमबारी की एक अन्य घटना में 15 आम नागरिक मारे गए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हमले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए थे। इसी हफ्ते बीबीसी ने अफगान संघर्ष पर एक नया शोध जारी किया था जिसमें अगस्त में मारे गए लोगों से जुड़ी जानकारियाँ थीं। इन आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 12 से ज्यादा लोगों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई। 8 साल पहले जापान के फुकुशिमा परमाणु आपदा से प्रभावित लोगों ने अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें तीन ऊर्जा कंपनियों के अधिकारियों को लापरवाही के आरोप से बरी कर दिया गया था। इस मामले से जुड़ा यह इकलौता आपराधिक मुकदमा था। अदालत ने कहा कि अधिकारी उस भूकंप और सुनामी के स्तर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे जिसने ऊर्जा संयंत्र को तबाह कर दिया था। इसके बाद आसपास के इलाकों से दसियों हजार लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा था, जिनमें से कई आज तक नहीं लौट पाए हैं। कोर्टरूम में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले को अन्याय बताया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन OECD ने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था 10 साल पुराने वित्तीय संकट के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। संगठन का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर इसका बड़ा कारण है। OECD ने कहा कि इस साल विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की दर 2.9% हो जाएगी, जो इसके पहले के अनुमान से 0.3% कम है। यह सुस्त रफ्तार अगले साल भी जारी रहने की आशंका है। संगठन ने विश्व नेताओं से व्यापारिक तनावों को दूर करने की अपील की है। OECD के प्रमुख अर्थशास्त्री लॉरेंस बून ने कहा,
ग्रोथ हैज बीन स्लोइंग एंड वी वेरी मच फियर दैट इट्स बिकमिंग एंड
विकास दर घट रही है और हमें डर है कि ये सबसे निचले स्तर पर अटकती हुई दिख रही है। जिन खतरों पर हमारी नजर है वो है व्यापार, ब्रेक्जिट और उससे जुड़े वित्त बाजार। OECD की प्रमुख अर्थशास्त्री लॉरेंस बून के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ईरानी विदेश मंत्री ने चेताया है कि अगर उनके देश पर अमेरिका या सऊदी अरब से कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो इससे युद्ध छिड़ सकता है। CNN से बातचीत में जावेद जरीफ ने कहा कि ईरान अपने क्षेत्र की रक्षा करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कल एक ऐसी तस्वीर हर जगह छाई रही जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आईं। आज ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो नजर आईं फूलों के गुच्छे के साथ। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने NRC से बाहर किए गए 19 लाख लोगों का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि भारत का कोई भी असली शहरी नागरिक रजिस्टर से बाहर न रह जाए। सुनिए BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पहले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और पिछले माह हुई नीति आयोग की बैठक से गायब रहने के बाद ममता बनर्जी इस बार जब दिल्ली आई हैं तो एक के बाद एक पहले प्रधानमंत्री से मिली और ठीक उसके दूसरे दिन ही आज अमित शाह से गृह मंत्रालय में मुलाकात की। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा,
असम में जैसे 19 लाख लोगों को नाम बात किया है उसमें बंगाली स्पीकिंग बहुत है, हिंदी स्पीकिंग भी है, गोरखा भाई बहन भी है, हिंदी भाषी भी है। जिसको जेनुइन वोटर को निकाल दिया है लिस्ट से उसको मौका मिलना चाहिए। They should feel they are very much Indian. हमारा तो स्टैंड आपको पहले ही मैं कह चुका कि हमारा उधर में NRC का जरूरत नहीं है। उन्होंने ध्यान से सुना और उन्होंने इसको देखेंगे बोला है।
हालांकि ममता बनर्जी NRC को लेकर BJP की मंशा पर लंबे वक्त से सवाल उठाती रही हैं और उनकी सरकार की पहल पर पश्चिम बंगाल असेंबली ने इसी माह सूबे में NRC को लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद ममता की तरफ से NRC के मुद्दे पर भी कोई राजनीतिक किस्म का बयान नहीं आया। BJP NRC को पूरे देश में लागू करने की बात करती रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जहाँ उसके कई नेताओं के मुताबिक कथित बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे के बीच ममता बनर्जी ने कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उनका हाव भाव कल भी नरम दिखा था।
पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला में करने के लिए बांग्ला राज्यों से जुड़ के उसका बारे में बहुत दिन हम लोगों ने असेंबली में इसको पास किया है। हमारा MP टीम भी प्रधानमंत्री का पास पहले आए थे, इसके बारे में हम चर्चा किया। उन्होंने इसको कुछ ना कुछ करने का वादा जरूर उन्होंने किया।
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को बीरभूम जिले में विश्व के दूसरे सबसे बड़े कोयला भंडार के उद्घाटन का निमंत्रण भी दिया है। ममता बनर्जी के बदले अंदाज को कई लोग, खासतौर पर बंगाल BJP के नेता, अपने आप को और अपने सहयोगियों को CBI के शिकंजे से बचाने के कदम के तौर पर बता रहे हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
अब जरा याद कीजिए, मोदी अमित शाह जिनके लिए चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ नहीं कहा था। कुछ महीने पहले तक मोदी विरोध का सबसे मुखर स्वर ममता बनर्जी थी। पहले मोदी से मुलाकात और अब अमित शाह। सवाल यह है कि क्या सारी कड़वाहट मिट गई, इसके मायने क्या हैं? विश्लेषण के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से।
देखिए, राजनीति में औपचारिक मुलाकात के नाम पे तो कुछ होता नहीं है। जो भी मुलाकात होती है उसका राजनीतिक अर्थ हमें निकालने की जरूरी है। अगर आप देखें पिछले एक महीने से ममता बनर्जी की जो आक्रामक तेवर थे BJP के प्रति, मोदी के प्रति और ये सरकार के प्रति, उसमें कुछ कुछ बदलाव आया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इसके कारण बहुत नरम पड़ गई है, जब चुनाव आएंगे तो जो संघर्ष है वो उतना ही कड़ा रहेगा जितना लोकसभा के समय था। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी समझ में आया कि सेंटर, ये जो सेंटर है ये कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या अन्य कोई गवर्नमेंट के जैसे नहीं है, ये बहुत ही टफ है। और खासकर राज्यों के प्रति, जो राज्य उनके साथ सहमत नहीं है उनके साथ ये किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। और ममता या ममता के पार्टी के लोग फंसे हुए हैं। अभी सीबीआई उनके जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं कोलकाता के, उनके पीछे पड़ी हुई है। तो इतने सारे केसेस में उलझी हुई है, सेंटर की सहायता की जरूरत है, आर्थिक सहायता, क्योंकि बंगाल जो है वो पिछड़ा राज्य है। वो हालांकि उसको उस पिछड़ेपन से उठाना चाहती है, लेकिन इसमें सेंटर की मदद, सेंटर की सहायता की बहुत जरूरी है।
लेकिन जो अमित शाह, जिनका हेलीकॉप्टर ममता बनर्जी ने उतरने नहीं दिया, जिनके खिलाफ मोदी सरकार और मोदी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक बयानबाजी हुई, अचानक तो नहीं लेकिन क्रमशः ये पूरा, आप ये कह रही है कि पूरा ये सब कुछ धीरे धीरे बदल गया और उदार हो गई?
बिल्कुल नहीं, राजनीति में सब हल्के धीरे 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 ही सब कदम उठाते हैं। और ये ना भूलिएगा कि 2021 में चुनाव भी है वहां पे बंगाल में, जो ममता के लिए भी इतना ही अहम है जितना बीजेपी के लिए है।
नरेंद्र मोदी की सरकार जब से सत्ता में आई है, अगर आप इसे इस तरह से देखें, ममता बनर्जी का तो उदाहरण आप देख ही रही हैं, लेकिन जो और प्रबल विरोधी हुआ करते थे जैसे मायावती ने 370 का समर्थन दिया, वो नरम पड़ी। इसके अलावा भी और एक लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो कि कभी कभी लगता है कि बीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, 370 के मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जयराम रमेश या शशि थरूर। क्या सरकार के आगे या मोदी की नीतियों के आगे ये सब समर्पण भाव है?
दोनों बातें हैं, एक तो ये समर्पण भाव भी है क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी है, दोबारा मैंडेट जीत के आई है, और वो जो उनको जो मैंडेट मिला है, जो सपोर्ट मिला है, उसकी अच्छी तरह अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह बहुत सफलता से इस्तेमाल कर रही है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो एक मैसेज गया विपक्ष को कि भाई ये कोई वैसी वाली सरकार नहीं है जिसके साथ हम कभी दोस्ती निभाएं या कभी दुश्मनी निभाएं, ऐसे नहीं है। तो जो ऑपोजिशन है वो एक तरह से आपका समर्पित ही हो गई है। कांग्रेस के जो अभी की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उन्होंने एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्टैंड लिया है जो पुराने लीडर्स के ने जो लिया था। पुराने लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति और समर्पित हैं, ये जो हैं यंगर लीडर्स वो मुझे लगता है कि आज का जो पल्स है देश का वो और अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसीलिए उन्होंने धारा 370 का समर्पण किया है। मोदी सरकार की एक ही ये है सफलता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी जो जनसंघ और बीजेपी चाहती थी कि देश अपना लें, वो बहुत सफलता से देश के सामने पेश किया, प्रोपेगेंडा करी कहिए जो भी कहिए, और कई सारे सेक्शंस ने उसे अपना लिया।
ममता बनर्जी की मोदी और शाह के साथ बैठक का विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका सेशन। और इस बीच केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में सुप्रियो को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा है। सीधे कार्यक्रम में कोलकाता से शामिल करते हैं अपने सहयोगी पीएम तिवारी को। पीएम तिवारी साहब, ये बताएं कि ये छात्रों ने विरोध क्यों किया बाबुल सुप्रियो का और क्यों धरने पर?
ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था और जो बाकायदा विश्वविद्यालय प्रबंधन से अनुमति लेकर आयोजन किया गया था, तो इसमें बाबुल सुप्रियो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक कलाकार है, गायक है, उन तौर पे उस तौर पे उनको न्योता दिया गया था। तो लेकिन उनके परिसर में जाते ही एस एफ आई और आयशा के सदस्यों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उनका कहना था कि इनको हम लोग अंदर नहीं घुसने देंगे परिसर में। और चूंकि उनके भाजपा से जुड़े होने और सांसद होने की वजह से उनका विरोध हो रहा था कि इनको हम लोग अंदर नहीं घुसने देंगे, तो उसी मुद्दे पर विरोध हुआ, रस्तमुक्की हुई, वो नीचे गिर गए, उनकी कमीज भी फट गई। फिर वाइस चांसलर सुरंजन दास ने उनको किसी तरह बचा के निकाला, अपने दफ्तर ले आए, हुआ। और एबीवीपी वालों ने इस विरोध में यूनियन के दफ्तर पे हमला किया, आग लगा दी, कंप्यूटर तोड़े और तमाम कागजात फाड़ दिए और तोड़फोड़ की वहां जमकर।
तो क्या ये समझा जाए कि ये जो मामला है वो वाम दल और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो छात्र नेता उनके बीच में फंस गया है?
हाँ, ये वाम दल ही थे मुख्य रूप से, उनका विरोध कर रहे थे और वो इससे पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में संघर्ष की घटनाएं होती रही है एबीवीपी और एसएफआई और आईसा के सदस्यों के बीच, और आज तो ये घटना काफी चरम पर पहुंच गई और बाद में इसमें राज्यपाल भी पहुंचे जो चांसलर भी है वहाँ, लेकिन अब भी काफी तनाव और उत्तेजना है और पैमाने पर भारी तादाद में पुलिस वाले हैं।
ये बताइए कि कोई इस मामले में एफआईआर हुई है, और क्योंकि जो वाइस चांसलर उन्होंने कहा है कि हम पुलिस को विश्वविद्यालय में नहीं घुसने देंगे।
नहीं, बाद में देर शाम परिस्थिति पर काबू पाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ही पुलिस को बुलाया और इनके सुरक्षा गार्ड तो जो थे, लेकिन बाद में अभी तो काफी बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहां मौजूद हैं। अभी तक एफआईआर नहीं कराई गई है किसी पक्ष से, लेकिन
जी
अब संभावना है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीएम तिवारी इस कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, बाबुल सुप्रियो का जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध किया और उसके बाद उनको वापस जाने के खिलाफ नारे लगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 7 हफ्ते से भारत प्रशासित कश्मीर में जनजीवन सामान्य नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही घाटी के नेता जेल में हैं, टेलीफोन और संचार संसाधन अभी भी ठप हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में सरकार विरोधी गतिविधियां न होने दी जाएं। बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर ने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और पूछा कि कश्मीर में स्थितियों में सुधार के लिए प्रशासन की कोई योजनाएं फिर प्लान सामने आया है।
प्रशासन तो लगातार प्रयास करता रहा है पिछले 1.5 महीने से कि स्थिति बहाल हो और उसमें जो जानी नुकसान है उसको भी बड़ी हद तक रोका गया है। अब जो बातें हो रही हैं गवर्नर प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक, उससे 3 फार्मूले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि बड़ी संख्या में नौजवानों को, युवकों को जो है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इनमें अधिकतम नौकरियां जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में होंगी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आर्मी। तो इसके लिए बाकायदा एक मुहिम छेड़ी गई है और इसके पहले चरम में 2000 कश्मीरियों को आर्मी में भर्ती कराया जाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सर्दियों की वजह से और ट्रांसमिशन लाइन काफी खराब हो गई हैं, तो और पावर की जनरेशन जो है वो नहीं हो पाती है, इसलिए गवर्नर प्रशासन ने और जो केंद्र सरकार का बिजली मंत्रालय है उन्होंने मिलकर एक 10,000 करोड़ की लागत के कई प्रोजेक्ट को शुरू किया है और कहा गया है कि उनको फास्ट ट्रैक आधार पर शुरू किया जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में 24 घंटे जो है बिजली प्रदान की जाएगी। तीसरा फार्मूला जो है पुलिस प्रशासन का है और उनका कहना है कि पिछले 45 रोज में उन्होंने 24 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया है और डीजीपी ने ये जोर देकर बात कही है कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों को डराते हैं कि वो बाहर न निकले, जो दुकानदारों या जो कमर्शियल वाहन होते हैं उन्हें चलाने वालों को धमकियां देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो आम गतिविधियां होती हैं उनको बहाल न करें, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध जो है मुकदमे जारी किए जाएंगे। तो ये तीनों फार्मूले जो है इन पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है।
पिछले दिनों केंद्र के कई मंत्रियों ने इस तरह की बातें कही कि मसला अब कश्मीर का नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का है, जो ये बयानात आ रहे हैं कोई प्रतिक्रिया वहाँ पे हुई है?
इस तरह के बयानों पे यहाँ वैसे भी जब भी राजनीति जो है बिल्कुल सक्रिय थी तब भी इसके बारे में तो बहुत ही नबे तुले तरीके पर ही प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन आज चूंकि सभी नेता, चाहे वो बात का समर्थन करने वाले नेता हों या अलगाववादी हों, सभी तो बंद हैं, किसी की तरफ से किसी भी चीज में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, जाहिर है इन बातों में भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, लेकिन एक प्रतिक्रिया जो है वो ठोस तरीके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से आई है और उनका कहना है कि ताकत या फोर्स के बल पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को हासिल करने के बजाय अगर ऐसा किया जाए कि भारत प्रशासित कश्मीर में जो है प्रगति और उन्नति की एक मुहिम छेड़ी जाए और इतनी तरक्की हो कश्मीर में कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहने वाले लोग खुद ये कहें कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो एक तरह का एक सॉफ्ट अप्रोच है ये। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खंडन नहीं किया कि जो केंद्रीय स्तर पर कहा जाता है कि उस कश्मीर को लेना है, उससे बचते हुए उसका जिक्र न करते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर और भारत प्रशासित लद्दाख में जो तरक्की होगी उस तरक्की को देखकर एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि उन्हें भारत के साथ रहना है।
भारत प्रशासित कश्मीर में क्या है ताजा हाल, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। जहां एक ओर भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में पिछले महीने की 5 तारीख के बाद से ही स्कूल बंद हैं, वहीं घाटी के कई इलाकों में कुछ ट्यूशन सेंटर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी बिना फीस लिए। ऐसा ही ट्यूशन सेंटर चरारे शरीफ में भी है, जहां हर रोज 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर चार शरीफ इलाके में कुछ नौजवानों की ओर से कायम किए गए ट्यूशन सेंटर में उन छात्राओं की आवाज़ें हैं जो बीते 44 दिनों से अपने स्कूल गए नहीं हैं। हर दिन सैकड़ों छात्र यहां सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं और 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। 10वीं क्लास के छात्र अंजर हुसैन भी हर दिन इसी ट्यूशन सेंटर में आते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले जब से वो यहाँ आने लगे तो उनकी रुकी हुई जिंदगी में एक रफ्तार आने लगा। अंजर हुसैन:
बहुत चेंज आई है। हम घर में एक तो बोझ बन के रह गए थे, घर में कुछ कर नहीं सकते थे, रिव्यूजन भी कैसे करते थे, टेंशन था बहुत। मैं अब जब यहाँ आए तो मतलब एक तो पढ़ भी रहे यहाँ पे, एक जो वो जिंदगी बोझ बनी थी वो भी अब खत्म हुए। अब आराम से अब से सेफ एंड सिक्योर है, अब यहाँ पे पढ़ भी रहे और अब सेफ एंड सिक्योर भी है यहाँ।
ये पूछने पर कि सरकार के इस ऐलान के बाद के स्कूल खोले गए तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो अंजर बोले:
हमने यही सोचा कि हम अगर जाएंगे तो हमको भी लगेगी, हमने सेफ समझा ये, हम घर में ही रहेंगे, जो पढ़ा है उसी का रिव्यूजन करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होगा।
रिब्बा तारिक भी इसी ट्यूशन सेंटर में रोजाना पहुंच जाती हैं। वो 5 अगस्त से कश्मीर में तनावपूर्ण हालात को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने किस तरह घर पर अपने दिन गुजारे।
मैं घर पे जो सिलेबस था उसको रिवाइज करती थी, कुछ दिन वहाँ ननिहाल खाला वाला के घर गुजार के फिर भी घर ही आ गई, क्योंकि फिर भी कितने दिन वहाँ पे रहते। फिर इसके बाद घर पे ही जो एक्स्ट्रा पढ़ाई की, फिर भी इसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जब मतलब टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनसे भी कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो गया था। फिर मतलब उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें मतलब कभी कभार टीचर्स के घर भी जाना पड़ा।
ट्यूशन सेंटर को शुरू करने वाले इरफान अहमद के लिए ये काम कोई आसान नहीं था।
बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना पड़ा। एज यू नो कि 5 अगस्त को जब रात को जब कम्युनिकेशन सारा बैठ गया तो अगले दिन उठे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, कर्फ्यू हो रहा है, 140 सेक्शन ये जो दफ़ा 144 है उसको इम्पोज किया गया है, कोई घर से बाहर नहीं। और उसके अगले दिन फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो इंडियन आर्मी थी उसकी इम्पोजिशन यहाँ पे थी कि कुछ हमें नमाज के लिए भी हम न जा सके। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, हम बच्चों के घर गए और उनको एक जगह आने के लिए कहा कि जो हमारा यहाँ पे सेंटर था यहाँ पे खाली। जब हमने इस इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो 5-10 बच्चे आए तो, और जो हालात करंट सिचुएशन है हमारी कश्मीर की तो उसके मद्देनज़र में रखते हुए हमने जो यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं उनको वॉलंटियर बेसिस पर उनको हमने पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि वो इस जो उनका जो एनवायरनमेंट है एजुकेशन का वो उससे दूर न रहे, ताकि अगर ये कौम बिगड़ेगी तो उसके बाद जो आने वाली जो जनरेशन है उस पर इसका सीधा सा असर देखता है और ये पीछे भी हुआ है।
इरफान का ये भी कहना था कि उन्हें हमेशा डर रहता है,
पता नहीं रहता कि जब हम सुबह को निकलते हैं कि आगे 10 वाले मिनट में क्या होने वाला, तो उस तरह की जो थ्रेट जैसे रहती है, पता नहीं कहाँ से प्रोटेस्टर्स आते हैं, पता नहीं कहाँ से जो मिलिट्री है उनकी इम्पोजिशन होती है, क्योंकि एक तरह का जो खौफ बैठा हुआ है बच्चों में, जो सोसाइटी है, लोगों में। हम अभी निकलते हैं पता नहीं कि अभी आर्मी आने वाली है, लोग आने वाले, कोई मॉब आने वाला है, कुछ होने वाला है, तो उसकी वजह से एक थ्रेट जैसा रहता है कि जो हमारा जो मिशन है कहीं पे इसकी खामी न रह जाए।
अंजर, रिबा और यहाँ इस ट्यूशन सेंटर में आने वाले 200 से अधिक छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर उनको कब अपने स्कूलों का रुख करना होगा। बस एक उम्मीद के साथ उनका हर दिन गुजर जाता है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
कार्यक्रम में आगे हम आपको जम्मू के शिविरों में रह रहे कश्मीरी जो लोग हैं उनकी बदहाली कैसी है वो सुनाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के साथ साथ भारत में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी गहमा गहमी है, क्योंकि इस कार्यक्रम में मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। ह्यूस्टन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए करीब 60,000 लोगों ने या तो अब तक टिकट बुक करवा लिए हैं या वो वेटिंग लिस्ट में हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। पिछले 3 महीनों में ये तीसरा मौका है कि ट्रंप और मोदी मुलाकात करेंगे। इससे पहले जून में G20 और पिछले महीने G7 की बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। हाउडी मोदी कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ह्यूस्टन में रहने वाले अधिकतर भारतीय मूल के लोगों में मोदी के आगमन को लेकर उत्साह है। ह्यूस्टन के रहायशी भारतीय मूल के विशेष शुक्ला कहते हैं,
बहुत ही एक्साइटमेंट है, एवरीबॉडी इज लाइक वेटिंग के भी पास आ जाए तो फिर यू नो वेटिंग फॉर द इवेंट, और ऊपर से ट्रंप भी वहां पे आ रहा है तो इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर एवरीवन कि भाई चलो मजा आएगा। और तैयारियां तो बहुत जोर शोर से चल रही है, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए, जो भी चीजें करनी है वो कर रहे हैं, वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन ये वो गिफ्ट ये सब।
अमेरिका के कई इलाकों से भारतीय मूल के लोग ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं। उधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से वैचारिक मतभेद के कारण या निजी मुश्किलों के कारण कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं। ह्यूस्टन में रहने वाली एक भारतीय मूल की अमरीकी महिला आभा वैचारिक मतभेद के कारण कार्यक्रम में नहीं जा रही, लेकिन हाउडी मोदी के बारे में वो कहती हैं,
बढ़िया सा शो चल रहा है एक तरीके का ना, इतना पैसा पानी की तरह से बह रहा है, इतने बड़े इवेंट में 5,000 से अधिक वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, पूरा अरीना मतलब कवर किया जा रहा है, इतने बड़े स्केल पे ये हो रहा है, इतना ऐसा शो।
एक अन्य महिला भावना अपनी परेशानियां बताते हुए कहती हैं,
टाइम बहुत बिगड़ता है ना, ट्रैफिक में से निकलना रहना सब लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट है, मॉर्निंग में मिलना वगैरह यू नो, क्योंकि वो ट्रैफिक में से डाउन टाउन तरफ की तरफ जाना ये वो, तो एज वाले लोगों को भी प्रॉब्लम और बच्चे वाले लोगों को भी प्रॉब्लम यू नो।
हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बहुत से लोगों को मोदी से भारत में सरकार की नीतियों और देश के विकास के बारे में उन्हीं की जबानी सुनना है, तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मोदी अब काले धन को वापस लाने जैसे मामलों में कुछ करके भी दिखाएं। ह्यूस्टन के रहने वाले भारतीय मूल के कांति भाई पटेल कहते हैं,
हम सुनना चाहते हैं कि वो बताए पॉलिसी के बारे में, सम एक्शन रिगार्डिंग ऑल दोस ब्लैक मनी, आई वांट हिम टू डू सम एक्शन सो दे कैन रिकवर पीपल्स मनी।
वहीं ह्यूस्टन में रहने वाले कुछ मुसलमान भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल ही नहीं बल्कि उसकी तैयारी में भी हाथ बटा रहे हैं। ह्यूस्टन की एक मुस्लिम संस्था इंडियन मुस्लिम्स एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के लताफत हुसैन कहते हैं,
कुछ लोगों का यह है कि हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, और कुछ लोगों का यह है कि नहीं, हमें बैठ करके उनसे बात करनी चाहिए। सो दोनों ही रुख कम्युनिटी ले रही है। हम लोग उनमें से हैं जिनका यह है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा सबकी सहमति जीतने के लिए, सबका विश्वास जीतने के लिए, स्पेशली सिक्योरिटी जो माइनॉरिटीज को इस वक्त नहीं मिल रही है उसके बारे में। हम लोग जो है तो प्राइम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम भी दे रहे हैं जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया है।
लताफत हुसैन बताते हैं कि उनकी संस्था के कई लोग हाउडी मोदी कार्यक्रम के प्रबंधन के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लताफत हुसैन खुद एक डेमोक्रेट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी में शामिल होने आ रहे हैं तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। 2020 के चुनाव को नजर में रखते हुए भी ट्रंप हाउडी मोदी में शामिल होकर विभिन्न प्रांतों में लाखों भारतीय मूल के अमरीकी वोटरों को भी रिझाने की कोशिश करना चाहते हैं। ट्रंप के साथ साथ अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के कई सांसद, गवर्नर और मेयर भी हाउडी मोदी में शामिल होंगे। ह्यूस्टन में जब ये कार्यक्रम जारी होगा तो बाहर मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर और मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियों के खिलाफ विरोध करने वालों में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग और पाकिस्तानी मूल के लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन से सितंबर की 23 तारीख को संयुक्त राष्ट्र में महासभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने पहुंचेंगे। मोदी 27 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोदी ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे और उन्हें गेट्स फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की एक घंटे की विशेष सभा दिन भर। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनाएंगे कि कश्मीर घाटी में किस तरह से सेब के बाग जिनके कभी हुआ करते थे उनको अपने घरों को छोड़कर वो पलायन करने पर मजबूर हुए, कश्मीरी हिंदुओं की कहानी। इसके अलावा कार्यक्रम में ये भी हम आपको बताएंगे कि इसराइल में जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद अब किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, अगली आने वाली सरकार किस तरह की दिखेगी। साथ ही खेल में विनेश फोगट ने कल किस तरह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और किस तरह से वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गईं, उनसे एक विशेष बातचीत भी हम कार्यक्रम में आपको आगे सुनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सुनेंगे विश्व समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो ईरान के साथ सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए ड्रोन हमलों के बारे में शांतिपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं। पोम्पियो ने बुधवार को इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताया था, लेकिन अबुधाबी के दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं। इसराइल में कुछ महीनों के भीतर हुए दूसरे चुनाव के बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध बरकरार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी लिक्विड पार्टी के साथ साझे प्रशासन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विपक्षी मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट मोर्चे के नेता बेनी गैंज ने कहा है कि वो सभी दलों का नेतृत्व करना चाहते हैं। फिनलैंड के बाद अब फ्रांस ने भी ब्रितानी सरकार से इस महीने के आखिर तक लिखित में नया ब्रेग्जिट प्रस्ताव लाने की अपील की है। फ्रेंच राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रितानी योजनाओं पर विचार करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में यूरोपीय संघ का अहम सम्मेलन होने वाला है। हालांकि फिनलैंड की तरह फ्रांस ने इसे निश्चित समय सीमा नहीं बताया है। इससे पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंती रिने ने कहा था कि यूरोपीय संघ को कुछ दिनों के भीतर ये मालूम हो जाना चाहिए कि ब्रिटेन आयरिश बैकस्टॉप की समस्या को कैसे सुलझाने जा रहा है। पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के 2 दशक बाद फिलीपींस में फिर पोलियो का नया मामला सामने आया है। 3 साल की एक बच्ची पोलियो से संक्रमित पाई गई है। साथ ही राजधानी मनीला और दक्षिणी शहर डवाओ में भी वायरस की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके लिए प्रतिरक्षण की दर घटने को आंशिक तौर पर दोषी पाया है। इसी साल फिलीपींस में सैकड़ों लोगों की डेंगू की चपेट में आने से मौत हो गई थी और सरकार ने इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित किया था। चेचक जैसी दूसरी संक्रामक बीमारियों के मामलों में भी फिलीपींस में बढ़ोतरी हुई है। देश में बढ़े हुए ट्रैफिक जुर्माने के खिलाफ कल राजधानी दिल्ली में टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कारोबारी ट्रक संगठनों ने हड़ताल की। इस हड़ताल की वजह से दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के कई स्कूल बंद रहे और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दावा है कि इसमें 41 संगठन शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री से मुलाकात में उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC से प्रभावित बांग्ला और हिंदी भाषी लोगों का मुद्दा उठाया। कल ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और प्रदेश का नाम बदलने समेत कई मसलों पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष सभा दिन भर। एक घंटे का कार्यक्रम है ये हमारा और अब कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इसराइल की। इसराइल में कुछ महीनों के भीतर हुए दूसरे चुनावों के बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध बरकरार है। यहाँ हुए मतदान में किसी मोर्चे को बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू ने सत्ता साझा करने के संकेत दिए हैं और विपक्षी नेता बेनी गैंज ने कहा है कि वो सभी दलों के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा से और पूछा कि सबसे पहले हमारे सुनने वालों को चुनाव परिणामों के बारे में बताइए।
वोटों की गिनती अभी भी जारी है। 97% वोटों की गिनती हो चुकी है और चुनाव आयोग के एक सूत्र के मुताबिक अभी 33 सीटें कखोल लवान यानी कि जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है उसको मिलती दिख रही है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को 31 सीटें मिल रही हैं। हालात अभी जो नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक न ही दक्षिण पंथी पार्टियों का जो समूह है वो सरकार बनाने की स्थिति में है और न ही जो सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर की जो पार्टियां हैं वो सरकार बना सकती हैं।
आपने दो पार्टियों की बात की, जो तीसरी पार्टी है उसका क्या हाल है?
इसराइल के इतिहास में हमेशा गठबंधन की सरकार रही है। ये दोनों ही पार्टियां जो हैं उनके साथ और भी कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बाद एक जो तीसरी पार्टी है अविगदोर लिबरमान की, जिसे 8 सीटें मिली हैं, अगर वो चाहे जिस भी पक्ष को वो समर्थन दे दें उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि दक्षिण पंथी पार्टियों का जो समूह है उनके पास 55 सीटें हैं और 8 सीटें अगर जुड़ जाती हैं तो 63 का संख्या जो है वो आ जाता है। और उसी तरह से ब्लू एंड व्हाइट जो विपक्षी पार्टियों का जो समूह है उसको अगर समर्थन मिलता है तो उनके पास अभी 66 सीटें हैं और ये 64 सीटें हो जाएंगी तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन इस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी का समर्थन नहीं देना चाहती, वो सिर्फ राष्ट्रीय एकता की सरकार चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति बनी हुई है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, और ऐसे में इस तरह की ही एक सरकार जो है वो देश को आगे ले जाने में कामयाब होगी।
हरिंदर, बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, तो अगर वो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए राजी हैं तो उन्हें उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा?
देखिए, उनके पक्ष में रिलीजियस पार्टियां जो हैं वो तैयार हैं और बाकी जो दक्षिण पंथी पार्टी है, एक यमीना जो कि अपने आप में एक समूह है, वो भी तैयार हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनती है तो वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो है गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ऐसे में वो उनके साथ सरकार में बैठना नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ गौरतलब बात जो है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में इस तरह की सरकार के लिए तैयार नहीं है, और आज उन्होंने पलटी मार करके राष्ट्रीय एकता की सरकार के पक्ष में बात की है। माना यह जा रहा है कि उनकी कोशिश ये है कि वो ये दिखाएं कि उनके पास बहुत जो समूह है वो बड़ा है और इस वजह से अगर राष्ट्रीय एकता की सरकार बनती है तो उनका दावा पहले बनता है। लेकिन चूंकि बाकी जो पार्टियां हैं सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर की, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि वो उनके नेतृत्व में किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे।
इसराइल के चुनावों में क्या हुआ और अब वहां पर क्या चल रहा है, जानकारी दे रहे थे यरूशलम से हरिंदर मिश्रा। कार्यक्रम एक बार फिर से लौटते हैं भारत प्रशासित कश्मीर पर। कश्मीर घाटी में अपने सेब के बाग, घर, गलियां और चौबारों को 3 दशक पहले छोड़कर पलायन करने को मजबूर कश्मीरी पंडितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्हें हर पार्टी की सरकारों से सिर्फ आश्वासन ही मिलते आए हैं। जम्मू भी इसकी जीती जागती मिसाल है, जहां 15,000 कश्मीरी हिंदू भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। 3 दशकों में न तो इनके लिए मकान की व्यवस्था हो पाई और न ही नौकरियों में इनका समायोजन हो पाया। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के पुरखू कैंप से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
वक्त हो चला है प्रार्थना का और जम्मू के बाहर पुरखू कैंप में कश्मीरी पंडित महिलाएं अपने परिवार के लिए खुशहाली की दुआ मांग रही हैं। मगर ये अपनी भाषा यानी कश्मीरी में नहीं बल्कि जम्मू की स्थानीय भाषा डोगरी में प्रार्थना कर रही हैं। वो इसलिए कि 3 दशकों पहले ही ये अपनी संपत्ति, संस्कृति और भाषा को कश्मीर की घाटी में ही छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। अब इनके गीतों में इनका दर्द भी झलकने लगा है। मौजूदा नस्ल को ना अपनी भाषा का पता है, ना ही संस्कृति के बारे में ही कुछ मालूम है। अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बावजूद कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी लौटने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रविंद्र राणा ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया مگر کہیں بھی اس میں کشمیری پنڈتوں کی کوئی چرچا ہی نہیں ہے۔
دفعہ 370 اٹھائی، کوئی ہمارے میں اس میں کوئی ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کیا کشمیری پنڈتوں کے بارے میں کیا ہے۔ اس پہ پردھان منتری نے کوئی ایسا سولوشن بھی نہیں بتایا، ایسا یہ نہیں بتایا بھائی کشمیری پنڈتوں کو یہ چیز دفعہ 370 سے، میں آپ کو یہ جب واپس وستھاپک جائیں گے تو ان کے بارے میں کیسے روڈ میپ کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 370 کا اٹھنا ہمارے لیے ٹھیک یا نہیں ٹھیک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جموں کے پرکھو کیمپ میں رہنے والے پنڈتوں کے پریوار نرکیے جیون جینے کو مجبور ہو رہے ہیں۔ ان میں سب سے برا حال یہاں کی مہیلاؤں کا ہے جو بنیادی سویدھاؤں کے نہیں رہنے سے پریشان ہیں۔
ہم دیکھو کس جگہ میں رہ رہے ہیں، کس گندگی میں رہ رہے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اور کیا نام ہے، باتھ روم کی دقت ہے یہاں پہ، لیڈیوں باتھ روم کہاں جائیں گے، باہر جانا پڑتا، ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پہ۔ کس کے پاس نہیں گئے ہم، کتنے منسٹروں کے پاس گئے، کچھ بھی نہیں سنائی ہے۔
میرے کو کیا پتا، 20 سال ہو گئے میں جموں میں رہتے ہوئے، کیونکہ لوگوں سے کتنی ماری۔ ایک بار میرے بچے ایسے تھے نا، کسی نے عورت نے کشمیر کی بندینی دی، بولی کمرہ کھا لیا، میرے پیٹ میں اس نے دھکا مارا، میرے کو ایسے ہی گرا دیا، مار دیا۔ ہم نہیں بتا سکتے کتنے مشکل پرابلم ہے،
کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ گھر ہے، کل کو کسی کو بتائیں گے بھی تو کیا بتائیں گے۔ اگر کوئی لڑکی کو رشتہ دینے بھی جائیں گے تو وہ لڑکی والے یہاں آئیں گے تو کیا دیکھیں گے، اس گھر میں لڑکی کو رکھیں گے ہم، جہاں باتھ روم نہیں ہے، جہاں روز آئے دن سانپ نکلتے ہیں یا بچھو نکلتے ہیں، اور لائٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو ہیٹ اندر کم سے کم بھی باہر 40 ڈگری ہوگی، اندر 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا اس کے۔ کبھی ایک رات آ کے گورنمنٹ کے منسٹر کو بولیے کبھی آ کے اندر رکے ہمارے پاس۔
پچھلے 3 دشکوں میں کئی کشمیری پنڈتوں نے گھاٹی میں اپنے پشتینی گاؤں جانے کی کوشش بھی کی، ان میں سے کئیوں نے کشمیریوں کے ساتھ واپس سامان्य سمبندھ بھی بنانے کی کوشش کی تاکہ ایک دن وہ اپنے گاؤں لوٹ سکیں۔ پرکھو کے نواسی کشمیری پنڈت کولن چندرپوری کہتے ہیں،
ہم نے ان 30 سالوں میں ایک ریلیشن شپ مینٹین کی تھی دوبارہ سے وہاں پر کشمیری لوگوں کے ساتھ، ہمارے بھائی جو وہاں رہتے تھے، مسلمان لوگ جو رہتے تھے۔ 370 ہٹنے کے بعد بالکل وہ 30 سال کی تپسیا بالکل ختم ہو گئی ہے، جو ہم نے وہاں پر ریلیشن مینٹین کی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے، وہ دوبارہ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے پھر سے۔ اب
پرکھو کیمپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، پہلے اس کیمپ میں جو رہتے تھے انہیں پکے مکان مل گئے ہیں۔ کیمپ کے خالی ہوتے ہی کشمیری پنڈتوں کا ایک دوسرا سموہ یہاں آ کر بس گیا، مگر تب تک جموں کشمیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کیمپ میں رہنے والوں کو اویدھ قرار دے دیا۔ کیوں، میں نے پوچھا جموں کشمیر سرکار کے راحت آیوکت تیج کشن بھٹ سے۔
اب دیکھیے وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ، اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ رہتے ہیں۔ میرے ہاں ایگزیکٹ اس وقت کوئی ڈاٹا نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو میں ہے انفارمیشن میرے پاس کہ 15,000 ریلیف ہولڈر کیٹیگریوں میں بھی سب لوگوں کے مکان نہیں بنے ہیں۔ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو رینٹ پہ رہتے ہیں، جو اکنامیکلی جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو پرکھو میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں۔
3 دشکوں پہلے کشمیر گھاٹی میں ہنسا کے بعد بڑے پیمانے پر کشمیری پنڈتوں کا پلائن ہوا، ان میں سے 40,000 جموں میں بطور شرنارتھی پہنچے۔ 30 سالوں میں سرکار صرف 5,428 لوگوں کو ہی پکے مکان دے پائی۔ 20,000 سرکاری ملازم تھے، جبکہ باقی کے 15,000 کشمیری پنڈت شرنارتھی جموں کے وبھن علاقوں میں خانہ بدوشی کر رہے ہیں۔ سلمان راوی، بی بی سی، پرکھو، جموں۔
کشمیری ہندوؤں پر سلمان راوی کی رپورٹ کیسی لگی آپ کو، اس پر ہمیں آپ کی پرتکریا کا انتظار رہے گا۔ اور اب کارکرم میں سوشل میڈیا میں آج کیا کچھ ٹرینڈ رہا، سہیوگی جیوتکا سنگھ سے جان لیتے ہیں۔
چناوی ریلیوں میں امت شاہ اور ممتا بینرجی کی زبانی جنگ اکثر خبروں میں رہتی ہے، لیکن آج ایسی ساری خبروں کو پیلے پھولوں نے ڈھک دیا۔ یہ پھول پشچم بنگال کی سی ایم ممتا بینرجی نے گرہ منتری امت شاہ کو دیے ہیں۔ دونوں نیتاؤں کے بیچ آج ملاقات ہوئی اور اس موقع کی تصویر سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے ہیں۔
کیا کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں؟
ہاں، ٹویٹر پر جاگرتی گپتا لکھتی ہیں کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن امت شاہ نے پوچھا یا نہیں کہ ممتا دیدی ان کا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں اترنے دیتی۔ وہیں رودر ٹھاکر نے لکھا، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملتے رہنے چاہیے۔
آج خبروں میں راجناتھ سنگھ بھی ہیں۔
جی بالکل ہیں، آج راجناتھ سنگھ بھی خبروں میں ہیں۔ وجہ ہے بھارت میں بنا سودیسی لڑاکو ویمان تیجس۔ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान में सवार हुए हैं। हरे रंग के कपड़ों में राजनाथ सिंह बाकी दिनों के मुकाबले काफी अलग लग रहे हैं। ट्विटर पर एक हैंडल है राफेल गांधी के नाम से। इस ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि निंद कमांडर अभिनंदन। वहीं सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह के कुछ घटनाओं की निंदा करने के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी चर्चा में ये वर्ड प्ले करने की कोशिश की गई है।
और आईफा अवार्ड्स,
मुंबई की मैं जरूर बात करना चाहूंगी। मुंबई में आईफा अवार्ड्स दिए गए हैं। ये फंक्शन हर साल दूसरे देशों में होता है, लेकिन इस बार बॉलीवुड का ये जाना माना आईफा अवार्ड्स मुंबई में हुआ। रणवीर सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। फिल्म राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म में चुना भी गया है। इंस्टाग्राम पर इस अवार्ड सेरेमनी के काफी वीडियोज और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड से ही एक और खबर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रही है, कुणाल खेमू, विजय राज और गजराज की फिल्म लूट केस। इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी कर रहा है।
कार्यक्रम में अब वक्त है आपकी भेजी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सुशीला सिंह। और राजेश जी, मेरे पास आप देख सकते हैं दो पोस्टकार्ड हैं, और क्योंकि पोस्टकार्ड हमारे पास बहुत देर से पहुंचते हैं और अगर हम इसके बाद भी इन्हें ना लें तो इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी बीबीसी की तरफ से। तो पहला पोस्टकार्ड है राजेश कुमार पांडे का, ये लिखते हैं लोहरा बरामदपुर ज़िला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि मैं आपके दिन भर कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ, समय बढ़ाने के लिए आप सबको धन्यवाद। दुनिया जहाँ में अमेजन पर की गई पेशकश बहुत अच्छी लगी। जहाँ तक मुझे याद है आपके संवाददाता श्री राजेश जोशी ने एक बार अमेजन की यात्रा की थी और उसका सजीव चित्रण भी किया था। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया एक बार बरमुडा के रहस्य के बारे में सटीक जानकारी दें, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। रामदत्त त्रिपाठी जी, मणिकांत ठाकुर जी, अचला शर्मा एवं ममता गुप्ता जी की बहुत याद आती है।
जी बिल्कुल, ये राजेश कुमार पांडे जी की जो चिट्ठी है इसमें उन्होंने कई चीज़ें पूछी हैं। इन्होंने बरमुडा के बारे में पूछा है, बरमुडा के बारे में सटीक जानकारी दें। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चिट्ठियां अगर किसी एक विषय पर जानकारी पाने के लिए आई होगी तो उसमें बरमुडा भी एक है जिसके बारे में कई श्रोता पूछते हैं। यहाँ उसके बारे में बहुत विस्तार से बताने का समय नहीं है। बरमुडा एक टापू है और बरमुडा अपने आप में एक छोटा सा देश है। तो किसके अधीन आता है वो, एक बरमुडा अपने आप में छोटा सा टापू वाला देश है। साथ में इन्होंने पूछा रामदत्त त्रिपाठी, मणिकांत ठाकुर, अचला शर्मा, ममता जी की, इनको बहुत याद आती है, हम सबको उनकी याद आती है, हमारे पुराने प्रसारक हैं।
अगला ईमेल है कुलदीप सिंह जाखड़ का, इन्होंने सिरसा हरियाणा से लिखा है कि आज के दिन भर में आपने सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की प्रतिक्रिया सुनाई, आपने ये छानबीन नहीं की कि उनको सरकार ने क्या दिया। भारत में सरकार पर दबाव बनाने का प्रचलन चल पड़ा है कि सरकार सड़क आदि बनाने के लिए कोई ज़मीन अधिग्रहण करती है तो लोगों को उस जगह का 3-4 गुना भाव देती है, फिर भी लोग प्रदर्शन करते हैं। आजकल बीबीसी ने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना बहुत शुरू कर दिया है, जैसे रिपोर्ट, लिंचिंग, कनेक्टिविटी आदि। कैलाश बुधवार और रत्नाकर भारतीय के समय की शुद्ध हिंदी का ज़माना याद आता है, जब हमें हिंदी के नए शब्द सुनने को मिलते थे।
बहुत ही दिलचस्प बात है, ज़माना बदलता है उसके साथ भाषा बदलती है। एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प चिट्ठी आई है और ये हमें लिखा है हमारे एक पुराने श्रोता ने, इनका नाम अवतार सिंह छाबड़ा है, इन्होंने देहरादून से ये चिट्ठी भेजी है। ये लिखते हैं मैं 80 वर्ष का हूँ और US सिटीज़न हूँ और आजकल भारत में हूँ। वर्ष 1964 से BBC हिंदी सुनना शुरू किया था, वो क्या ज़माना था, आले हसन और पुरुषोत्तम लाल पाहवा जी का और उसके साथ BBC की गोल्डन वॉइस रत्नाकर भारती जी का। इसके बाद इन्होंने और कई बातें कही हैं लेकिन साथ में इन्होंने लिखा है कि मैं अब तक आपको 10-1 पत्र लिख चुका हूं, अगर आपने इस बार मेरा पत्र नहीं पढ़ा तो मैं BBC सुनना बंद कर दूंगा। बिल्कुल बंद मत करिए, बिल्कुल बंद मत करिए, देखिए हमने आपका पत्र पढ़ा, लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से और बड़ा पत्र लिखा है, दो पन्ने का पत्र है, जिसमें इन्होंने ओंकारनाथ श्रीवास्तव को, रजा अली आबदी को और कई दूसरे लोगों को याद किया है। आपका बहुत शुक्रिया पत्र लिखने के लिए।
अगला ईमेल है एहसान असगर का और ये बुलडाना महाराष्ट्र से लिखते हैं कि इस बार का इंडिया बोल ठीक ठाक रहा, राजेश जोशी जी की कमी लगातार महसूस होती रही, वुसत का ब्लॉग हमेशा ही अच्छा लगता है, दोनों देशों के लोगों का माइंडसेट एक सा हो गया या कर दिया गया है, शबाना जी से बातचीत अच्छी लगी पर मुझे लगा कुछ ज्यादा समय इसे दिया गया, कश्मीर के विषय को लेकर समय बढ़ाया गया पर कुछ दिनों से कश्मीर की खबरें बहुत कम सुनने को मिल रही हैं।
एहसान साहब, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया बोल आपको पसंद आया, आपको राजेश जोशी की कमी खली, कुछ लोगों ने पिछले हफ्ते जो चिट्ठियां हमें लिखी थी उसमें लिखा था कि राजेश जोशी कार्यक्रम में एक तरह से जबरदस्ती सुनाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जबरन वहां मौजूद थे, जबकि एक प्रस्तुतकर्ता काफ़ी होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और हमारी कोशिश होती है कि कश्मीर में अगर कोई भी खबर है जो ज़रूरी है तो हम ज़रूर शामिल करेंगे उसको, लेकिन अगर कोई खबर नहीं है या हम तक नहीं पहुँच पा रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि आपको हम हर रोज़ उतनी ही खबरें देते रहें जितनी हर रोज़ होती हैं। किसी दिन खबरें ज़्यादा होती हैं, किसी दिन कम होती हैं।
जी, अगला ईमेल है गणेश प्रसाद हुजदार का, ये लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत विवेचना में फ्री फ्रैंक और फियरलेस पर आधारित ब्लिट्ज साप्ताहिक के संपादक रूसी करंजिया के बारे में सुनकर अच्छा लगा, इसी तरह वसतुल्ला खान की डायरी में धार्मिक संप्रदाय के कारण कई निर्दोष हिंदू और मुसलमान जुल्म के शिकार होने की घटना सुनकर दुख हुआ, प्रस्तुति के लिए बीबीसी की पूरी टीम को धन्यवाद।
गणेश जी हमें लगातार चिट्ठियां लिखते हैं और मुझे लगता है कि अब हमें श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है। चलते चलते आपको पता बता दें, अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपने अपनी भेजी चिट्ठियां सुन ली और अब आपको बताते हैं कि खेल की दुनिया में क्या हो रहा है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के साथ कैसा रहा, सुनिए हमारे सहयोगी अमनप्रीत सिंह से।
विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार का दिन भारत के लिए मिश्रित रिजल्ट्स लेके आया, जहां बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, वहीं बजरंग पुनिया की सेमीफाइनल में विवादास्पद हार ने रंग में भंग डाल दिया। एक आसान ड्रॉ का फायदा उठाते हुए बजरंग अपने पहले तीन प्रतिद्वंदियों को बिना किसी मुश्किल से हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में उनके सामने थे कजाकिस्तान के दौलत नियास बिकोव। ये एक कड़ा मुकाबला था जिसमें बजरंग को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाजी उस वक्त नियास बिकोव के पक्ष में हो गई जब बार बार अतिरिक्त विश्राम लेने पर भी उन्हें चेतावनी नहीं दी गई, इससे उनको संभलने का मौका मिला। बीच में एक ऐसा दाव भी लगा जिसमें कजाकिस्तान के पहलवान को 4 अंक दिए गए, जबकि विशेषज्ञों का मानना था कि बजरंग को भी 2 अंक मिलने चाहिए थे जो उन्हें नहीं दिए गए। अंततः मुकाबला 9-9 की बराबरी पर छूटा, परंतु क्योंकि कजाकिस्तान के पहलवान ने इस मुकाबले में एक 4 अंक वाला दाव लगाया था, उन्हें विजेता घोषित किया गया। अब बजरंग 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल के लिए शुक्रवार को मैट पर उतरेंगे। वहीं रवि दहिया ने आज उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, वो शुरू से ही बहुत जानदार और मेहनती पहलवान रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने पहले यूरोपियन चैंपियन आर्सिन को और बाद में 2017 के विश्व चैंपियन और विश्व के नंबर 3 पहलवान युकी ताकाहाशी को हराकर 2020 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। रवि की आज खास बात ये थी कि वो अपने बाउट्स में पिछड़ने के बावजूद बहुत धैर्य से खेलते रहे, उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही काबिले तारीफ थी। वहीं महिलाओं के मुकाबले में पूजा ढांडा ब्रॉन्ज मेडल बाउट एशियन चैंपियन जिंगरूपेई से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। उनके पास एक सुनहरा मौका था भारत की पहली महिला पहलवान बनने का जिन्होंने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते हों, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। पिछले वर्ष बुडापेस्ट में उन्होंने 57 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार उन्होंने 59 किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था जो कि एक नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी है। साक्षी मलिक और दिव्या काकरान तो अपना पहला राउंड भी नहीं आज जीत पाई। शुक्रवार को होने वाले मुकाबलों में 2010 के चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार नजर आएंगे। उनके अलावा मौजूदा जूनियर विश्व चैंपियन दीपक पुनिया भी अपनी पहली सीनियर विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।
अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट नूर सुल्तान से। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने कल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। विनेश ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड को हराने के साथ ही विनेश ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। हमारे सहयोगी अमनप्रीत सिंह ने बात की विनेश फोगाट से।
विनेश, आपके पास एशियन गेम्स गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड था और आपके सीवी में से एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल मिसिंग था। 3 बार आपने पहले भी अटेम्प्ट किया लेकिन मेडल नहीं मिल पाया। इस बार न केवल मेडल मिला है लेकिन साथ में ओलंपिक का क्वालिफिकेशन भी है। काफी बड़ी मूवमेंट है आपके लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी वही की सभी वर्ल्ड के टॉप एथलीट आते हैं और उनमें से मेडल निकालना और ओलंपिक के ईयर में, जबकि सबको पता है कि फर्स्ट क्वालिफाई, तो सभी ने अपना 100% दिया, तो एक रिलीफ मिला मुझे कि मुझे पहले मिल गया है कोटा, तो भी मेरे पास प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम मिल गया मुझे। और ओलंपिक्स का बाकी है अभी, वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज हुआ है, गोल्ड नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वो स्टेप टू स्टेप मैं चाहती हूँ कि उसमें जाऊँ। आज मुझे ब्रॉन्ज मिला है तो होपफुली भगवान की दया से अगर मैं मेहनत करूंगी तो शायद वो गोल्ड में भी तब्दील होगा।
विनेश, आपके सेकंड रिपीचेज राउंड की बात करें तो वो बहुत अहम मुकाबला था सारा से। हालांकि आप पहले जीत चुकी थी लेकिन वो एक मुश्किल खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग भी उनकी है और उन्होंने जिस तरह से 5 बार आपके राइट लेग के ऊपर अटैक किया, पकड़ भी बनाई लेकिन आपने अंक नहीं गया वहां पर, तो उस मुकाबले के बारे में बात करें क्योंकि वो आपके मेडल के लिए काफी महत्वपूर्ण था वो मैच जीतना।
सभी टॉप एथलीट थे, मेडिसिन स्थित मेरा पहला मैच था, मुझे वो मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मुझे पता है कि सामने जापान भी है तो कुछ भी हो सकता था उस ग्रुप में, तो मैं हर मैच पे फोकस कर रही थी। मेडिसिन से मैंने निकला लेकिन मैं जापान से नहीं निकल पाई, लेकिन होपफुली मुझे था कि फाइनल में कम से कम जाए, जापान फाइनल में गई है। उसके बाद सारा का मुझे ये पता था कि हाँ कि घुस तो जाएगी, लेकिन मुझे इतना पता है उसमें स्ट्रेंथ कितना है और मेरे अंदर स्ट्रेंथ कितना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेटेजी मैं कर रही थी कि मैं इसको यहीं पर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करती हूँ और अगर वो स्कोर भी कर जाती है अगर 2 पॉइंट तो मैं, क्योंकि वो थकती भी उतना है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा उसको यूज करवा रही थी उधर, तो वो जो स्ट्रेटेजी था कहीं ना कहीं मेरा कोच कुछ बोल रहे थे लेकिन मुझे उधर मैट पे जाने के बाद जो मुझे फील हुआ वो मैंने अपने अकॉर्डिंग में ट्राई किया और वो सक्सेस हुआ।
कोचिज आपको क्या कह रहे थे और आपने क्या किया?
कोचिज बोल रहे थे कि कॉन्टेक्ट से दूर हो, उसका राइट जो आर्म है उसको आप ब्लॉक करो, आप घुसने मत दो पैर में। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो टायर्ड होने लगी है, वो घुस रही है, मैं पॉइंट नहीं दे रही, वो थक रही है, तो मेरा वो हो गया कि इसको थकाना है अभी, इसको घुसने दो, घुसने दो, पॉइंट मैं भी दूंगी इसको जल्दी।
जिस तरह से आपकी बाकी बाउट्स मैंने देखी और 4 मैचेस में आपने सिर्फ 3 अंक गवाए, उसमें भी एक इसमें पैसिविटी का गया, तो लग रहा था कि अगर गोल्ड के रस्ते में कोई एक लड़की नजर आती थी तो सिर्फ मुकायदा ही थी। आप भी ऐसा मानते हो कि अगर मुकायदा को अगर आप किसी तरह से काबू कर लेते तो गोल्ड आपका था?
तो कैसे नहीं बोलूंगी कि गोल्ड मेरा ही था, वो मैट पे कुछ भी हो सकता है। आपने देखा मुकायदा को कैसे उसने पीआर के ने बिल्कुल 11-0 से निकाल दिया, उस पीआर को मैंने 2 बार बीट कर रखा है, तो वो हर एक के साथ अलग अलग मैच होता है, लेकिन जापान के साथ नहीं होता, शायद मैं फाइनल में होती हूँ, शायद मैच चेंज होता है, रिजल्ट ही चेंज हो जाते हैं हमारे सबके, तो कुछ भी हो सकता है। हमारा वेट कैटेगरी ऐसा है ना कि काफी ऐसे ऐसे अपोनेंट है, 6-7 ऐसे हैं कि उनके साथ में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, वो दिन वो बॉडी लैंग्वेज उस दिन वो सब वो डिसाइड करता है।
जब ड्रॉ देखा था कि आप के सामने पहला मैच रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ में है, फिर रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन यानी मौजूदा चैंपियन के साथ है, फिर वर्ल्ड नंबर 1 से भी मुकाबला है, क्या विनेश फोगाट नर्वस थी?
नर्वस ऐसे नहीं थी कि मैं कि वो टॉप है या वो टॉप है या वो टॉप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, काफी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ये ओलंपिक के लिए, वो नर्वसनेस था कहीं ना कहीं कि, और काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं स्ट्रॉन्ग से हार भी जाती हूँ तो भी मुझे कि हाँ कि मैंने अपना दिया, मैं मुकायदा से हारी हूँ लेकिन मुझे पता मैंने अपना 100% एफर्ट ट्राई किया है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी है, उस चीज पे मैं काम करूंगी, लेकिन वही कि वो नर्वसनेस ऐसा नहीं है कि मैं जापान को देख के या स्वीडन को देख के मैं नर्वस होती हूँ, वो कंपटीशन और वो जो चीज है वो नर्वसनेस तो ऑब्वियसली आती है, वो बहुत जरूरी आई थिंक।
विनेश फोगाट से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अमनप्रीत सिंह। और अब बाकी खेल की खबरों के साथ हैं इंदु पांडे मौजूद हैं। इंदु, बाकी भी कुछ है?
अरे बिल्कुल है, बात करते हैं बैडमिंटन की, तो लेके चलते हैं सीधे चांगझू चीन में। भारत की विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने कल पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ली शुई रुई के खिलाफ आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गई थी, लेकिन आज महिला एकल प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की पोर्न पावी चुचुवोंग के खिलाफ 3 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हार के साथ चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से वो बाहर हो गई हैं।
यानी कि खराब खबर है।
जी हाँ, इसको खराब खबर ही कहेंगे। और इसी के साथ ही कोई भी भारत की महिला खिलाड़ी चाइना ओपन में नहीं है और भारत के ही सात्विक चिराग भी हारे, अश्विन पोनप्पा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी भी इससे आउट हो चुके हैं। और अगर दूसरी खबर की बात हम आपको बताएं तो वो ये है कि आज ही भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की चयन समिति ने टीम की घोषणा की जिसमें 15 ओलंपिक स्पर्धाओं के निशानेबाज शामिल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे बाकी की खेल की खबरें बताने के लिए। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों के एक समूह ने उनका घेराव किया, काले झंडे दिखाए और करीब डेढ़ घंटे तक उन्हें कैंपस में घुसने से रोके रखा। इस बीच बाबुल सुप्रियो धरने पर बैठ गए हैं। इसराइल में कुछ महीनों के भीतर हुए दूसरे चुनावों के बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध बरकरार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी लिक्विड पार्टी के साथ साझे प्रशासन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विपक्षी मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट मोर्चे के नेता बेनी गैंज ने कहा है कि वो सभी दलों का नेतृत्व करना चाहते हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो ईरान के साथ सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले के बारे में शांतिपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं। पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के दो दशक बाद फिलीपींस में फिर पोलियो का नया मामला सामने आया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम का संपादन किया राजेश जोशी ने, स्टूडियो संभाला कपिल देव सिंह ने। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।